रविवार 4 सितंबर दिनभर के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। श्रीनगर गई सर्वदलीय टीम से अलगाववादियों ने किया मिलने से इनकार। टीम से अलग होकर गए नेता भी वापस लौटे। मदर टेरेसा को मिला संत का दर्जा। वेटिकन में हुए समारोह में जमा हुए हजारों लोग।
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti। आमेन।
G20 की बैठक से पहले भारतीय प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मिले। कहा एक दूसरे की इच्छाओं और चिंता को समझना जरूरी। और संडे दिनभर में इस हफ्ते खास मुलाकात अकीरा यानी सोनाक्षी सिन्हा से।
बहुत पसंद है एक्शन फिल्में देखना, उनका हिस्सा होना। मेरे हीरोज को देख देख कर मतलब मैं सोचती थी कि कब मुझे ये मौका मिलेगा करने का, और वो अकीरा में मिला मुझे।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 28 सदस्यों की एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दो दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंच चुका है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य वहां अलग अलग राजनीतिक दलों से मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि राजनाथ सिंह ने पहले ही कहा था कि वे उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो उनसे मिलने में दिलचस्पी दिखाएंगे। उधर भारत प्रशासित कश्मीर के शोपियां जिले में फिर से हिंसा भड़क गई है। यहां प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को अलग थलग करने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। अधिकारियों के अनुसार लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल हुए हैं। भारत में गरीबों के लिए काम करने वाली नन मदर टेरेसा को आज संत की उपाधि दी गई। वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में हुए एक समारोह में पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत की उपाधि दी। इस मौके पर वहां दसियों हजार लोग मौजूद थे। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए खास तौर पर वेटिकन गए हैं। मदर टेरेसा का निधन साल 1997 में हो गया था, लेकिन उनके नाम से दो बीमारियों के चमत्कारिक ढंग से ठीक होने के बाद वेटिकन ने उन्हें संत की उपाधि देने का फैसला किया। चीन के ह्वांगजो में सालाना G20 देशों का सम्मेलन शुरू हो चुका है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि विश्व के विकास के लिए दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अपनी आर्थिक नीतियों का ठीक से संचालन करना होगा। उन्होंने कहा, विश्व अर्थव्यवस्था कई परेशानियों से गुजर रही है, जैसे कम व्यापार, मुद्रा बाजार में हलचल, विश्व व्यापार और निवेश में विकास की धीमी गति। G20 में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को काफी उम्मीदें हैं कि यह सम्मेलन विश्व अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में लाने के रास्ते निकाल सकेगा। ये थे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सोमालिया में मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और काम करने की जरूरत है। सोमालिया में पिछले 4 सालों में 30 पत्रकारों की हत्या हुई है। संयुक्त राष्ट्र हाई कमीशन की कमिश्नर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2014 के बाद से लगभग 120 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। देश में मीडिया के कई दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में साल 2012 के बाद से 18 मंत्रियों की हत्या हुई है और कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सदस्य कीथ वाज ने पुरुष स्कॉट की सेवाएं लेने के लिए पैसे दिए थे। संडे मिरर अखबार ने यह दावा किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना कि मदर टेरेसा को संत का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन इस खबर पर हम आएंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले आपको बताएं कि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 30 सदस्यों वाली एक सर्वदलीय टीम दो दिन के दौरे पर आज श्रीनगर पहुंची है। अलगाववादियों और व्यापारियों ने इस टीम से मुलाकात करने से मना कर दिया है। इस बीच सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनेताओं समेत 200 लोगों ने टीम के सदस्यों से मुलाकात की है। इस दौरान बंद और प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई और उसमें करीब 400 लोग घायल भी हुए। पूरी घाटी हड़ताल में है और संवेदनशील इलाकों में नाकाबंदी की गई है। घाटी का ताजा हाल भेजा है रियाज मसरूद ने।
6 वर्ष पहले जब भारत का आल पार्टी डेलीगेशन घाटी के दौरे पर आया था तो हालात तकरीबन सामान्य हो चुके थे। आज जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सत्तारूढ़ी और अपोजिशन पार्टियों के नेता घाटी पहुंचे तो चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे थे। भारत का सर्वदलीय डेलीगेशन श्रीनगर पहुंचते ही सीधे डल झील के किनारे पर कड़ी सुरक्षा वाले शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचा, जहां बारी बारी यहां की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इनसे मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार के प्रवक्ता नईम अख्तर ने बताया,
प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बातें कही और उन्होंने कहा कि इसमें डायलॉग से शुरू करना है, डायलॉग से सॉल्यूशन ढूंढना है, तो उसी का एक नतीजा है कि आज ये एक हाई पावर्ड डेलीगेशन आया है।
डेलीगेशन में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी और कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी भी शामिल हैं।
We would want to have a dialogue, at least I would want to have a dialogue without any preconditions with every stakeholder.
Mr. Yechury ने बताया कि वो अलगाववादियों समेत सबके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। ताहम मिस्टर ईश्वरी ने कहा कि किससे कब और कहां बात करनी होगी, ये निर्णय यहां की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लेंगी। गौरतलब है कि महबूबा मुफ्ती ने कल ही अपनी पार्टी की अध्यक्षा होने के नाते अलगाववादियों को बातचीत का न्यौता दिया था, लेकिन अलगाववादियों ने इसे एक मजाक बताया और कहा इन्हें ऐसा करने में अपनी ही सरकार के एलाई बीजेपी का समर्थन हासिल नहीं है। विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी बातचीत में शिरकत की, लेकिन उन्होंने महबूबा मुफ्ती की आलोचना करते हुए ट्वीट पर लिखा कि अगर अलगाववादियों से बातचीत करने का न्यौता दिया गया तो इन्हें जेलों का पता भी देना था जहां अलगाववादियों को कैद किया गया है। इस दौरान आम लोगों को भी भारत सरकार के इस प्रयास से किसी खास नतीजे की उम्मीद नहीं है।
हल तब होगा जब वो लोगों का गुस्सा ठंडा करे। जब तक लोगों में गुस्सा है, फ्रेश किलिंग्स हो रही है अभी, जब तक इन सब मसलों का हल नहीं होगा तो आल पार्टी से लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं, तो आप बेहतर ही समझ सकते हैं।
सोल्यूशन तो कोई नहीं है, बिकॉज 2010 में फिर इन्होंने इंटरलोक्यूटर्स की एक टीम बिठाई थी, उन्होंने कहा था देखिए जी हम देखेंगे प्रॉब्लम इस क्या है, उन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर की, बट दैट वाज पुट इनटू डस्टबिन दैट टाइम।
इसका सिर्फ मैंने उन लोगों को होगा जो उन्होंने भारत को अपना हाकिम माना है, और वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे कुछ निकलेगा कि नहीं।
डेलीगेशन से मिलने वाले विधायक इंजीनियर रशीद ने बातचीत के दौरान सीधे सीधे जनमत संग्रह कराने की मांग कर डाली।
पैलेट गन चलाएं, पावा गन चलाएं, तोप चलाएं, मिसाइल चलाएं, जब तक जम्मू कश्मीर का तनाजा उसके तवारीखी पस मंजर में हल नहीं होगा तब तक लोग मरते रहेंगे, जिसका हमें दुख है। इसका शिकार कल कोई होगा, आज मैं हो सकता हूँ, कल कोई और हो सकता है, तो लिहाजा इन चीज़ों से कोई मुस्बत नतीजा बरामद होने की आप उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं जब ही दिल्ली के मातहत हूं तो इंसाफ की उम्मीद रखना शायद बहुत ही नादानी हो।
आज ही दक्षिणी कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मिनी सेक्रेटेरिएट को लोगों ने आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने त्राल में स्थानीय विधायक के घर पर भी हमला किया। त्राल के ही रहने वाले चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की 8 जुलाई को पुलिस ऑपरेशन में मौत के बाद कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गया था। 7 हफ्तों के दौरान अब तक 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 4000 सुरक्षा कर्मियों समेत 10,000 से अधिक लोग घायल हैं। आज भी शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, बड़गाम और दूसरे जिलों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ों के दौरान 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
खबर सच है अगर BBC पर है।
ये BBC रेडियो है और आप सुन रहे हैं दिन भर निखिल रंजन के साथ। भारत में गरीब लोगों के लिए काम करने वाली मदर टेरेसा को आज संत का दर्जा मिल गया। वेटिकन में हुए खास समारोह में उन्हें पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि प्रदान की। लंबे समय तक चली प्रक्रिया के बाद आज का ये दिन आया है। मदर टेरेसा की 1997 में मौत हुई थी। 2003 में उन्हें धन्य घोषित करने के साथ इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। वेटिकन में इस मौके पर हजारों लोग आज जमा हुए। इनमें भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थीं। पूरा ब्यौरा सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen. भारत में गरीबों और बीमारों के लिए काम करने वाली नन मदर टेरेसा को वैटिकन में हुए एक समारोह में संत की उपाधि दी गई। रविवार को वैटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस ने ये घोषणा की।
बियातम टेरेसियम दे कलकुत्ता संतन एसे डिसर्निमुस एट डेफिनिटी।
प्रभु की दिव्य दृष्टि से, ईसाई मान्यता के उल्लास से, प्रभु ईसा मसीह की आज्ञा से, ईश्वर के दूत पीटर और पॉल की आज्ञा से, प्रभु की मदद के लिए की गई कई प्रार्थना और बातचीत के बाद, सभी पादरी भाइयों से सहमति के बाद, हम कोलकाता की धन्य टेरेसा को संत घोषित करते हैं और आज से उनका नाम संतों की सूची में शामिल करते हैं।
पोप फ्रांसिस के शब्द। मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। इस संगठन से दुनिया भर में 3,000 से ज्यादा नन जुड़ी हुई हैं। मदर टेरेसा ने कई आश्रम, गरीबों के लिए किचन, स्कूल, कुष्ठ रोगियों के लिए बस्तियां और अनाथ बच्चों के लिए घर बनवाए। शहर की गंदी बस्तियों में काम करने की वजह से उन्हें गटर की संत भी कहा जाता था। कोसोवो, इटली और संत टेरेसा के जन्म स्थान मैसेडोनिया के साथ साथ कई देशों से लाखों लोग सेंट पीटर स्क्वायर में इस समारोह के लिए इकट्ठा हुए, जहां भारत से भी कई हजारों लोग गए थे। समारोह में आए इन लोगों ने मदर टेरेसा को याद किया।
She did ordinary things with extraordinary love, and so that's open for everyone in the world.
उन्होंने साधारण कार्यों को असामान्य ढंग और प्यार से पूरा किया। उनके मन में पूरी दुनिया की लोगों के लिए प्यार और दया भाव था, इसीलिए यह बाकी इंसानियत के लिए सीख है।
We are here to pray for Nana Teresa because she's from our country.
हम यहाँ उनके लिए प्रार्थना करने आए हैं, हमारे परिवारों के लिए, प्यार और आजादी के नाम पर, और बाकी सभी लोगों के लिए भी।
जब मुझे मदर टेरेसा से मिलने का मौका मिला था, मैंने उनसे कहा था कि मुझे गोद ले लें। उन्होंने मेरी बात मान ली और उसके बाद से उन्होंने मुझे एक माँ के समान प्यार दिया। उन्होंने मुझे धार्मिक शिक्षा दी और हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया।
मदर टेरेसा की मौत के 5 साल बाद पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उनके एक चमत्कार को स्वीकार किया था। एक बंगाली आदिवासी महिला मोनिका बेसरा को पेट में अल्सर था, जो ठीक नहीं हो रहा था। मोनिका बेसरा के मुताबिक उनकी बीमारी के ठीक होने का ये चमत्कार मदर टेरेसा के आशीर्वाद की वजह से हुआ। इसी घटना की वजह से मदर टेरेसा को 2003 में बीटिफाई यानी धन्य घोषित किया गया। उसके बाद पोप फ्रांसिस ने 2015 में उनके दूसरे चमत्कार को अपनी स्वीकृति दी, जब साल 2008 में ब्राजील के एक आदमी के अनुसार उसका ब्रेन ट्यूमर मदर टेरेसा की दिव्य दृष्टि से ठीक हो गया। उन्हें संत बनाए जाने पर कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी में उत्सव हो रहा है। 1979 में संत टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने काम से दुनिया भर के लोगों के साथ साथ तमाम हस्तियों जैसे ब्रिटेन की राजकुमारी डायना, अमेरिका की हिलरी क्लिंटन और पूर्व फलस्तीनी नेता यासिर अराफात इत्यादि को प्रभावित किया था।
मदर टेरेसा को संत की उपाधि, रिपोर्ट सुना रहे थे वैभव श्रीवास्तव। इधर चीन के हांगझाओ में G20 देशों की बैठक में शामिल होने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे की इच्छाओं और चिंताओं का सम्मान करना होगा। प्रधानमंत्री की चीनी राष्ट्रपति से हुई मुलाकात के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुलाकात सद्भाव के वातावरण में हुई।
He reiterated that our response to terrorism must not be motivated by political considerations.
उन्होंने फिर इस बात पर जोर दिया कि चरमपंथ पर हमारा रुख राजनीतिक आकांक्षाओं से प्रेरित नहीं होना चाहिए। नीतिगत रूप से दोनों देशों को एक दूसरे की रणनीतिक जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना होगा। सकारात्मक सहयोग को बढ़ाने के लिए नकारात्मक विचारों को पनपने से रोकना होगा। उन्होंने खासतौर से इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि सीमा पर शांति बनाए रखने में वो कामयाब हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थायी सहयोग और सुदृढ़ विकास के लिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के विचारों, चिंताओं और रणनीतिक जरूरतों का सम्मान करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप। प्रधानमंत्री ने G20 के लिए ग्रुप फोटो खिंचवाने के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और दुनिया के दूसरे कई और नेताओं से मुलाकात की। इसके अलावा अलग से हुई मुलाकातों में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल से भी वो मिले। आज ही उन्हें सऊदी अरब के डिप्टी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलना है।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
संडे दिनभर आप सुन रहे हैं बीबीसी रेडियो पर निखिल रंजन के साथ। और जैसा कि आप सब लोगों को अब तक इस बारे में जानकारी मिल चुकी होगी कि इस हफ्ते निर्देशक AR मुर्गादॉस की फिल्म अकीरा रिलीज हुई है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं सोनाक्षी सिन्हा, और अनुराग कश्यप। इस फिल्म में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा एक्शन करती हुई नजर आएंगी। तो आइए आज संडे दिनभर में आपको सुनवाते हैं सोनाक्षी सिन्हा से हमारे सहयोगी विदित मेहरा की ये खास बातचीत।
नमस्कार, संडे दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विदित। आज हमारी मेहमान है अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, जिनकी फिल्म अकीरा इस हफ्ते रिलीज हुई है। फिल्म अकीरा का निर्देशन किया है आर मुर्गादॉस ने और इसमें सोनाक्षी सिन्हा के साथ आपको दिखेंगे निर्देशक अनुराग कश्यप एक अभिनेता के रोल में। तो आइए सोनाक्षी से ये बातचीत शुरू करते हैं। सोनाक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी एक मुलाकात में। बॉलीवुड में आमतौर पर मेल एक्टर्स को ही एक्शन करते हुए ज्यादा देखा गया है और हम देखते भी उन्हीं को है। अब आप भी इस रेस में आ गई हैं सोनाक्षी फिल्म अकीरा से। कितना मुश्किल रहा आपके लिए एक्शन करना और स्टंट्स करना?
एक्शन जनरली मुश्किल होता है एज अ वुमन और अ मैन। आई थिंक बहुत तैयारी उसमें जाती है, बहुत प्रेपरेशन करना पड़ता है। हमें स्क्रीन पर देखकर तो हमारे जो एक्टर्स है उसे इतना आसान दिखाते होता है, बट ऐसा है नहीं। काफ़ी कड़ी मेहनत लगती है एंड मैंने भी इस फिल्म के लिए बहुत ट्रेनिंग की थी। फिल्म शुरू होने से पहले 4 महीने पहले मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। शूट के दौरान मैं ट्रेन करती रही थी। सो इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट।
एफर्ट के बिना काम करने का क्या मजा सोनाक्षी। पर पहला रिएक्शन क्या था आपका जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई थी? मतलब एक्साइटेड थी, कंफ्यूज थी, या फिर ऑफर मिलते ही आपने हाँ कर दिया था क्योंकि इस फिल्म में आपको कुछ अलग करने का मौका मिल रहा था?
जब ये फिल्म ऑफर हुई मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुर्गादॉस एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने हमारे देश के इतने बड़े बड़े एक्शन हीरोज के साथ काम किया है, इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई है। वो पहली बार एक तो वुमन सेंट्रिक फिल्म बना रहे थे, एक हीरोइन से एक्शन करवा रहे थे। उन्हें लगा कि मैं ये कर पाऊंगी, तो मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात थी कि वो मेरे पास आए फिल्म लेकर। और जो कैरेक्टर था इस फिल्म में, जो रोल था, फिल्म की जो प्रमाइस थी, वो मुझे बहुत बेहद पसंद आई एंड इसलिए मैंने की। और रिएक्शन मेरा अच्छा ही था जब आई थी। तो
अकीरा की बात करें तो फिल्म एंटरटेनिंग तो लग रही है, साथ में एक मैसेज भी देती दिख रही है कि सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लड़कियों को भी इसकी जरूरत पड़ती है।
आई थिंक एवरी वुमन, एवरी गर्ल, एवरी चाइल्ड ऑल्सो विल टेक अवे समथिंग फ्रॉम दिस फिल्म, बिकॉज इट्स नॉट ओनली एन एंटरटेनिंग फिल्म, इसमें एक मैसेज भी है सबके लिए। और मुर्गादॉस सर की खासियत यह है कि वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो एंटरटेनिंग भी होती है और उनमें कुछ ना कोई मैसेज भी रहता है हमेशा। ही डजंट मेक लाइक, ही हैज गुड कंटेंट इन हिज फिल्म। इसमें भी वही है, इट्स एन अंडरडॉग स्टोरी अबाउट हाउ दिस गर्ल कम्स आउट विक्टोरियस इवन दो शी इज फेस्ड विद सो मेनी difficult circumstances. It basically shows the strength of a girl. So I'm sure कि लड़कियाँ भी इसे देखकर एक message है self defense का वो अपनाएंगी। In fact इसमें दिखाया जाता है कि बचपन से कैसे kids should be taught how to defend themselves, क्योंकि आगे जाकर आपको पता नहीं है कि आप कौन से situation में पड़ सकते हैं। तो for that I think a lot of people will take that message away.
चलो उम्मीद करते हैं कि ये message लोगों को मिल जाए। पर अब बात करते हैं आपके करियर की शुरुआत की। आपने फिल्म दबंग से अपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया, अर्जुन कपूर हो गए, अक्षय कुमार हो गए। अब तक की आपकी जो ये जर्नी रही है 7 सालों की, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? ईजी थी या फिर डिफ़िकल्ट है?
ईजी या डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं नाप तो लूँगी अपनी जर्नी को। मैं ये कहूँगी कि एक अच्छी जर्नी रही है, बहुत कुछ सीखा है मैंने। जो कुछ भी सीखा है मैंने फिल्मों में ही सीखा है, क्योंकि मैं एक्टिंग स्कूल या कोई कोर्स तो नहीं किया था मैंने। जो भी सीखा है मैंने ऑन द जॉब सीखा है, थ्रू एक्सपीरियंस सीखा है। तो जो अच्छी फिल्में भी की, बुरी फिल्में भी की, बहुत लोगों से मिली, बहुत लोगों के साथ काम किया, सबसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। एंड आई फील कि ये जो मेरी सीखने की जर्नी है अभी भी चालू है। हर नई फिल्म के साथ भी मैं कुछ सीखती हूँ एंड आई थिंक भी मैं हर फिल्म को ऐसे अप्रोच करती हूँ कि वो मेरी पहली फिल्म है। जब आप किसी चीज़ को इतना पसंद करते हैं, बेहद पसंद करते हैं, तो आई थिंक उसे करना आपको अच्छा लगता है। सो आई लव बींग ऑन सेट, आई लव शूटिंग, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई लव बींग पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फिल्म।
सोनाक्षी, जय गंगा जल, नीरजा, सरबजीत और अब अकीरा, सब फिल्मों में हीरोइंस ने कमान संभाली है। क्या कहना है आपका इस ट्रेंड के बारे में कि औरतों को अब मीनिंगफुल रोल्स मिल रहे हैं और बॉलीवुड में भी अब ऐसी फिल्मों को जगह दी जा रही है फीमेल ओरिएंटेड?
Women are really coming forward, stepping forward and showing everybody that in a man's world we are as important and we are as capable as anybody else. And I feel ki ab industry mein bhi ek acha daur aa gaya hai auraton ke liye, jahan par roles aise likhe ja rahe hain which are challenging for them, which are portraying them in a very very good light, in a heroic light. So you know, know, that's great. I feel glad ki aise aur audience bhi ek accept karne lag gayi hai aisi filmon ko, dekhna pasand karti hai aisi filmon ko.
Bilkul, audience bhi variety mangti hai aur India mein variety of problems mein se ek hai female feticide. हर कोई बेटा ही चाहता है और बेटी तो बिल्कुल भी नहीं चाहता. कुछ कहना चाहेंगी आप?
नहीं, यही कहूंगी कि एक बहुत बुरी बात है. लोगों की मेंटालिटी बदलनी चाहिए मोर देन एनीथिंग एल्स. एंड आई फील कि जो लड़कियां अभी अचीवमेंट्स कर रही है एंड मीडिया की वजह से वो अचीवमेंट्स हाईलाइट हो रही है, आई थिंक लोगों को और पता चला कि बेटी होना एक अच्छी बात है. सो यू नो, आई फील प्रोसेस तो ऑन रहा है काफी सालों से टू इराडिकेट दिस.
एक फिल्म को करने के लिए हाँ कहने से पहले एक्टर का एक सेल्फिश मोटिव भी छुपा होता है, जैसे कि अच्छी स्क्रिप्ट में होना या किरदार का बड़ा स्ट्रांग प्रेजेंस होना. आपके लिए इस फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहा, किरदार या फिर स्क्रिप्ट?
इस फिल्म में दोनों. आई थिंक जब एक स्क्रिप्ट अच्छी होती है तो उसमें कैरेक्टर्स भी अपने आप अच्छे लगने लगते हैं जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं. तो मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था, ये सबसे बड़ी बात थी. मैंने एक्शन करना था, ऐसे सिचुएशंस को पोर्ट्रे करना था जो मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, बिकॉज आई हैव नॉट गॉन थ्रू एनी ऑफ दैट व्हाट अकीरा हैज गॉन थ्रू इन लाइफ. तो ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था.
और आपने वो चैलेंज बखूबी निभाया और बड़ी प्यार से आपने एक्शन किया, मतलब लाइक अ प्रो. चोटें कितनी लगी थी आपको और क्या कुछ ऐसा हुआ था जिससे आपको शूटिंग को रोकना पड़ा हो?
थोड़ी बहुत इंजरीज हुई थी क्योंकि वेल एक्शन करना, जैसा कि मैंने कहा, आसान चीज नहीं है और इंजरी से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट कभी कभार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, किसी और का हाथ कहाँ जा रहा है वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है, तो आपको अपने आप को बचाना होता है. बट थोड़ी बहुत इंजरीज हुई थी, मेरे नी में लगा था, रिस्ट में लगा था. तो बट मैंने शूटिंग स्केड्यूल को रुकने नहीं दिया, मैं तभी भी काम कर रही थी एंड एक्शन शूट कर रही थी. एंड अदर देन दैट आई फील, हाँ, मैंने इतनी सारी एक्शन फिल्में की है, मुझे बहुत पसंद है एक्शन फिल्में देखना, उनका हिस्सा होना, इसलिए मैंने इन द पास्ट भी इतनी सारी एक्शन फिल्में का हिस्सा रह चुकी हूँ मैं. एंड मेरे हीरोज़ को देख देख कर मतलब मैं सोचती थी कि कब मुझे ये मौका मिलेगा करने का, और वो अकीरा में मिला मुझे. तो उन्हें देख कर भी मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड वो यहाँ पर अप्लाई किया है.
सोनाक्षी, जिस तरह हर लड़के का सपना होता है कि उसे एक चार्मिंग प्रिंसेस मिल जाए जिसे वो बहुत प्यार करे और वो कैरेक्टराइज भी कर देता है उसको, मतलब उसकी काली काली आंखें होंगी, लंबे लंबे बाल होंगे वगैरह वगैरह. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सपनों का राजकुमार कैसा होगा तो आप क्या कहोगी?
मेरे सपनों का राजकुमार वो फिल्मी टाइप का बिल्कुल है ही नहीं. आई थिंक एक गुड पर्सन जिसका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो, जो मुझे खूब हंसा सके और यू नो मेरी पर्सनालिटी को मैच कर सके, आई फील वैसा होगा.
वैसे मेरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, आई होप यू गेटिंग द वाइब्स. खैर, अब इस फिल्म अकीरा में आपने दो दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, एक तो है आर मुर्गादॉस सर और दूसरे हैं अनुराग कश्यप. कैसा रहा एक्सपीरियंस दोनों के साथ काम करने का?
दो दिग्गज डायरेक्टर, हाँ जी, अनुराग कश्यप हमारे फिल्म में हैं, बट एज एन एक्टर सबसे अच्छी बात है कि वो इस फिल्म में एज एन एक्टर ही थे. बिल्कुल उन्होंने सेट पर डायरेक्टर बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने वो काम मुर्गदास सर पे छोड़ दिया था और मुर्गदास सर ने उन्हें भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है, उनको भी बहुत अप्रिसिएशन मिला है. यू नो, कहा है कि वो एक इतने अच्छे, इतने मेनिसिंग विलन लग रहे हैं, एकदम कैरेक्टर में घुस चुके हैं. एंड ऑनेस्टली वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं. इनफैक्ट हम शूट करने के टाइम मैं उनसे कह रही थी कि आपको और फिल्में करनी चाहिए एज एन एक्टर, क्योंकि यू आर वेरी गुड एट इट. एंड हाँ, बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे इस फिल्म का हिस्सा बन पाए.
आपने इस फिल्म में गाना भी गाया है रज रज के, आपका पिछले साल भी एक सिंगल रिलीज हुआ था और आपने एक बार पहले भी बताया था इंटरव्यू के दौरान कि आपको गाने का बहुत शौक है, तो अब आप इस शौक को सीरियसली ले रही हैं?
जी, मैंने इसमें एक गाना गाया है, मुझे शौक रहा है हमेशा बचपन से ही. एंड आई फील कि मैं एक ऐसे पोजिशन में हूँ जहाँ पर मैं अपना हर सपना साकार कर सकती हूँ, पूरा कर सकती हूँ. इसलिए मैंने अपना सिंगल भी रिलीज़ किया था पिछले साल दिसंबर में, और उसके बाद मुझे रज रज के गाने का मौका मिला तो मैंने उसे भी एकदम झपट लिया उस मौके को, क्योंकि एक शौक रहता है, एक हॉबी रहती है, ऐसी चीज़ है कि जो मैं आगे जाकर करना चाहूँगी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ. तो हम वीडियो शूट करे थे रज रज के का, और जोर जोर से गा रही थी मतलब शॉट देते टाइम, और फॉक्स की टीम आई मेरे पास और उन्होंने मुझसे कहा कि यू नो व्हाट, व्हाई डोंट यू गो एंड सिंग द सॉन्ग. सो आई सेड हाँ ठीक है चलो. एंड हम पहुंच गए विशाल शेखर के स्टूडियो पे, मैं गई माइक के पीछे, उन्होंने मुझे गाइडेंस दी थोड़ी बहुत विशाल शेखर ने, एंड आधे घंटे में गाना रेडी था. सो इट वॉज अ वंडरफुल एंजॉयबल एक्सपीरियंस.
और गाना वाकई आपने बहुत अच्छा गाया है, मीडिया ने भी काफ़ी कुछ लिखा है आपके गाने के बारे में, पर एक और चीज़ मीडिया ने लिखी आपके बारे में, एक इंग्लिश टैबलॉइड ने, कि आपकी शादी होने वाली है. आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ बस मैं इस पर.
नो आई हैव टू से दैट थोड़ा बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए लोगों को, क्योंकि आज इतना आसान हो गया है कि हम एक ट्वीट से क्लैरिफाई कर सकते हैं एंड लोगों को पता चल जाता है. एंड आई फील दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो कुछ भी लिख सकते हैं किसी के बारे में भी. और ऐसा नहीं कि ये आप मेरे बारे में लिख रहे हो, किसी और को अफेक्ट नहीं कर रहा है, मेरे फैमिली को अफेक्ट करता है, मेरे फ्रेंड्स को अफेक्ट करता है, विच इज़ नॉट राइट. सो आई फील इट्स रॉन्ग, देर शुड बी सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड बट ठीक है, जब ट्वीट आ जाता है तो खुद ब खुद चॉप हो जाता है लोगों का.
सोनाक्षी अभी मुंबई में गणपति फेस्टिवल का रंग छा जाएगा और फिर गणपति विसर्जन किया जाएगा, और फिर आपको समंदर किनारे दिखेंगी गणपति पप्पा की मूर्तियां बिखरी हुई. जब आप वो मंजर देखती हैं तो कैसा लगता है आपको?
मुझे एक्चुअली बहुत दुख होता है जब नेक्स्ट डे जो बीच के फोटोग्राफ्स निकलते हैं एंड यू नो इतनी मतलब गंदगी फैली होती है. वो छोड़िए जो आइडल्स के जो पीसेस पड़े रहते हैं, इट्स सो सैड टू सी यू नो गॉड इज लाइंग हाफ like ऐसे ऐसे अंग यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं. आई थिंक पीपल शुड मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू स्टॉप दैट. ना तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है, ना तो लोगों के लिए अच्छा होता है, ना हमारे भगवान के लिए अच्छा होता है. सो आई फील देर शुड बी अ सोल्यूशन दैट शुड कम आउट एंड यू नो कुछ और उपाय निकालना चाहिए इसका.
और आपकी कोई मेमोरी जो जुड़ी हो गणपति के साथ जो आप हमसे शेयर करना चाहती हो?
मैं जब बहुत छोटी थी तभी मम्मी गणपति जी रखती थी घर पे, बट आई हैव रीसेंट मेमोरीज. दबंग से पहले मेरे दोस्त रखते थे और आई यूज़ टू लव कि वो एक ट्रक रेंट करते थे और पूरी फैमिली उस ट्रक पे बैठकर जाती थी विसर्जन के लिए. सो दीज आर सम मेमोरीज दैट आई हैव फॉर गणपति.
तो ये थी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा संडे दिन भर में.
सोनाक्षी सिन्हा से बात कर रहे थे विदित मेहरा. और इधर अब कुछ खेल समाचारों का रुख कर लेते हैं. US ओपन का मुकाबला जो है वो अपने चौथे दौर में पहुंच गया है, और उसके बारे में ताज़ा जानकारी लेकर के आदेश कुमार गुप्ता आ चुके हैं स्टूडियो में. जी आदेश जी.
जी निखिल, अगर महिला एकल वर्ग के मुकाबलों की बात की जाए तो दूसरी वरीयता हासिल जर्मनी की अंजलि कर्बर, 14वीं वरीयता हासिल चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा, और 7वीं वरीयता हासिल इटली की रॉबर्टा विंसी यूक्रेन की लिसिया तुसरेंको का सामना करेंगी. पुरुष एकल वर्ग में चौथे दौर में आज चौथी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल का सामना फ्रांस के लुकास पाउले से, और शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना अमेरिका के काइले एडमंड से होगा. इससे पहले कल महिला युगल वर्ग में भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा ने दूसरे दौर में स्विट्जरलैंड की विक्टोरिया गोलुबिस और अमरीका की निकोले मेलिशियर की जोड़ी को 6-2, 7-6 से मात दी. अब तीसरे दौर में सानिया मिर्जा और बारबोरा अमेरिका की निकोले गिब्स और जापान की नाओ हिबोनो से भिड़ेंगी. लेकिन मिश्रित युगल वर्ग में भारत के लिएंडर पेस और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस दूसरे दौर में अमेरिका की कोको वांटवेगे और राजीव राम की जोड़ी से कड़े संघर्ष के बाद 7-6, 3-6, 13-11 से हार गई, और इसके साथ ही पिछले साल की इस चैंपियन जोड़ी का अभियान समाप्त हो गया. दूसरी तरफ मिश्रित युगल वर्ग में ही भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार कनाडा की गैब्रिला दाब्रोवस्की ने उलटफेर किया. इस जोड़ी ने छठी वरीयता हासिल चेक गणराज्य की आंद्रिया हलवाचकोवा और पोलैंड के लुकास कुबोट को 5-6, 6-3, 10-7 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है.
बहुत शुक्रिया आदेश जी खेल समाचारों के लिए. और आइए अब आपसे विदा लेने से पहले सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर.
BBC समाचार. गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 28 सदस्यों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंच चुका है. भारत प्रशासित कश्मीर के शोपियां जिले में फिर से हिंसा भड़क गई है. भारत में गरीबों के लिए काम करने वाली नन मदर टेरेसा को आज संत की उपाधि दी गई. चीन के हुआंगजो में सालाना G20 देशों का सम्मेलन शुरू हो चुका है. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सोमालिया में मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और काम करने की जरूरत है. सोमालिया में पिछले 4 सालों में 30 पत्रकारों की हत्या हुई है. संडे मिरर अखबार ने यह दावा किया है कि दो बच्चों के पिता कीथ वाज और लिबर पार्टी के सांसद ने बीते महीने लंदन के अपने घर पर एक पुरुष के आने के लिए पैसे दिए थे। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया मानसी दाश ने और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं अजीत सारथी। आपसे डेढ़ घंटे बाद घटनाचक्र में दोबारा मुलाकात होगी। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।